ओम शांति। ये ओम शांति सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है। जब भी कहीं देश में विदेश में दुनिया वाले सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखते हैं तो आपस में क्या बोलते हैं कि ये ओम शांति वाले हैं। और शब्द अलग अलग भाषाओं में होंगे लेकिन ओम शांति इंटरनेशनल हो गया है। सोचने की बात है कि हमें ओम शांति के अर्थ स्वरूप में रहना है या ओम शांति बोलना है। ओम शांति बोलते क्यों हैं हम? क्योंकि हम भी ओम शांति हैं और दूसरों को भी संदेश देना है कि वो भी ओम शांति है। और दूसरी बात यह है कि हमारी दूसरी पहचान है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। अब ब्रह्मा कुमार और कुमारी का अर्थ क्या हो गया कि हम बच्चे हैं। कुमार और कुमारी कहते हैं बच्चों को। तो हम किसके बच्चे हैं? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन शिव बाबा के बच्चे तो सारे ही हैं, हम हैं शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किए हुए ब्राह्मण बच्चे। तो दो बातें हो गई। अगर मैं बहनों से पूछूं कि आप ब्रह्मा कुमारी ही हैं या ब्रह्मा कुमार भी हैं तो आप क्या कहेंगे? और भाइयों से पूछूं कि आप ब्रह्मा कुमारी हैं या ब्रह्मा कुमारी भी हैं तो आप क्या कहेंगे? हैं? दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा भेदभाव चलता है स्त्री और पुरुष का। बाबा कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अज्ञान के कारण होता है। बाबा ने हमें क्या बताया है कि आप वास्तव में विष्णु चतुर्भुज स्वरूप हो। आधे जन्म हमारे पुरुष रूप में होते हैं और आधे जन्म हमारे स्त्री रूप में होते हैं। इसलिए हम चतुर्भुज हैं। हमें किसी जन्म में चोला पुरुष का मिल जाता है, किसी जन्म में नारी का मिल जाता है, लेकिन हैं हम आत्मा और चतुर्भुज है। तो बाबा कहते हैं जब भी हम इस शरीर को देखें, एक तो कहें मेरा शरीर है और दूसरा कहें कि मैं चतुर्भुज आत्मा हूं, मैं कोई पुरुष या स्त्री नहीं हूं। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि दुनिया के मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हम देवी देवता थे। इसलिए उसका एक प्रमाण है कि वो नाम तो अपने पूर्वजों के रख लेते हैं देवी देवताओं के, लेकिन पता नहीं है इसलिए स्त्री पुरुष का दोनों नाम रख लेते हैं। आपको सीता राम मिल जाएंगे, राधे श्याम मिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण भी मिल जाएंगे। अब बाबा कहते हैं एक तो तुम देवता हो नहीं तो देवताओं के नाम कैसे रखते हो, और दूसरे तुम स्त्री हो या पुरुष हो या दोनों हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को ज्ञान नहीं है। अब आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्कुल बेफिक्री का समय जीवन में कौन सा होता है? जीवन में सबसे ज्यादा बेफिक्री का समय आज की दुनिया में भी बच्चे का होता है, क्योंकि बच्चा जो है उसको कोई चिंता नहीं होती, बच्चा चिंता मुक्त है। मुझे कौन भोजन कराएगा, कल मेरा क्या होगा, परसों मेरा क्या होगा, नोट बदली करूं या ना करूं, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। क्यों? कि बच्चे के माता पिता का बैठे हैं, बच्चे को उन्होंने भोजन कराना है। चलो कलयुग में तो बच्चे को भूख लग जाती है, माता पिता भी कलयुगी हैं, तो बच्चे को रोना पड़ता है, हैं? तो कहते बच्चा रोता है तो उसको भूख लगी है। Unless the child cries, it won't get milk, इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन देवताओं के बच्चों को देखिए, क्योंकि देवताओं के बच्चों पर समय पर ही सब कुछ होता है। देवी देवताओं में और गिरे हुए देवी देवताओं में, जिसको हम हिंदू कहते हैं, फर्क क्या है कि देवी देवता जो हैं, वो हर चीज समय पर करते हैं, एक्यूरेट करते हैं। समय उनका नेचुरल चलता है, वो घड़ी रख के कोई समय के हिसाब से नहीं करते, नेचुरल चलता है। और उसका कारण क्या है कि वो जितना देखना होता है उतना ही देखते हैं, ना ज्यादा ना कम। जितना उनको सुनना होता है और जो सुनना होता है वही सुनते हैं, ना ज्यादा ना कम। हर चीज उनकी नेचुरल और परफेक्ट चलती है, इसलिए देवी देवता हैं। उनका मन भी सतो प्रधान, तो बाकी सब चीज आप ऑटोमेटिकली सतो प्रधान। देवी देवताओं में कभी फूट पड़ती है आपस में? देवी देवताओं में कभी दो मत होते हैं? नहीं, त्रेता तक भी दो मत नहीं होते। इसलिए दो धर्म भी नहीं होते, दो राज भी नहीं होते, दो भाषाएं भी नहीं होती। अब बाबा कहते हैं कि वो हम कहां सीख रहे हैं, देवी देवताओं जैसे गुण, क्योंकि देवी देवता बनना है। हम यहां पर इतनी दूर दूर से बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा विश्व पिता है, तो आए हैं किस लिए? पहली बात, हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमें ढूंढा, क्या ख्याल है आपका? क्योंकि हम तो ढूंढते रहे और ज्यादा उलझते रहे, बाबा ने हमको ढूंढ लिया। और ढूंढ करके बाबा को पता है कि कल पहले वाले मेरे बच्चे हैं, आज का रूप देख के नहीं ढूंढा, हमारा आदि रूप और अनादि रूप जन्मपत्री देखकर ढूंढा। हीरा जो होता है, क्या मिट्टी में भी पड़ा हो वो हीरा ही रहता है, तो बाबा को तो पता है। ब्रह्मा बाबा भी हीरे का व्यापारी थे और शिव बाबा तो हीरे जैसा जन्म देते हैं, हीरे जैसा ही बनाते हैं। तो बाबा ने ढूंढा, अच्छा, और हम बन गए उनके बच्चे। अब ये बताइए कि किसी के राजा के घर कोई दुनिया में जन्म ले ले तो उसको कोई चिंता होती है राजकुमार को कि मुझे नौकरी करनी होगी या बिजनेस करना होगा, मेरा घाटा हो जाएगा या फायदा हो जाएगा, मैं कुछ पैसे बचा के रख लूं कल को कुछ हो ना जाए, कभी कोई राजकुमार ऐसे सोचता है? दुनिया का भी नहीं। सोचना होगा तो उसका पिताजी सोचता है, आजकल तो बेफिक्र बादशाह नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुमको अपना बच्चा बनाया, अब फिर भी तुम चिंता करो। जबकि आज की दुनिया का भी छोटा बच्चा चिंता नहीं करता, और छोटा बच्चा नेचुरल होता है। कभी आपने देखा कि छोटा बच्चा ज्यादा दूध पी ले? जानवर का बच्चा भी ज्यादा दूध नहीं पीता। अगर जानवर के बच्चे को आप, जानवर को भी आप घास खिलाओ, जब उसका पेट भर जाएगा तो क्या करेगा? ऐसे करेगा, और जोर करोगे सख्ती करोगे तो क्या करेगा, सींग मारेगा, भागो यहां से मुझे एक्स्ट्रा खिला रहे हो। मनुष्य का बच्चा भी आज भी जितना उसको भोजन करना होगा करेगा, जब उसको सोना होगा सो जाएगा, जब उसको आंख खोलनी होगी खोलेगा। अच्छा, हम भी बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि कभी कभी बच्चे अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, यानी आयु के हिसाब से वो समझ लेते हैं मैं बच्चा तो नहीं हूं। अभी मेरी शरीर की आयु 84 इयर्स हो रही है, अगर मैं समझू कि मैं 84 इयर्स का बुजुर्ग हूं तो क्या मैं बाबा का बच्चा बन के बाबा का वर्षा ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो मुझे बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी, अरे तुम्हारा तो 84 ईयर का शरीर है, तुम बच्चे कैसे हो गए? पर हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो आप बताइए कि बच्चे बनने में सुख है या बड़े बनने में है? क्योंकि बच्चे को कोई चिंता ही नहीं। अच्छा, बच्चे का जो भविष्य बनाना है, बच्चे का जो सौभाग्य बनाना है, वो बच्चे ने बनाना है या उसके पिता ने बनाना है? पिता ने, शिक्षक ने, गुरु ने बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता भी हूं, पहले तो बच्चे बनना है तभी उसी को पढ़ाएगा, मैं तुम्हारा परम शिक्षक भी हूं, और ऐसा गुरु नहीं हूं जो तुम रहो और गुरु छोड़ के चला जाए फिर दूसरा करना पड़े, नहीं, मैं तो तुमको पढ़ा करके साथ भी ले जाता हूं, पद भी देता हूं। जैसे आजकल कई एजुकेशन की संस्थाएं होती हैं, वो गारंटी करती हैं यहां तुम पढ़ोगे तो तुम्हें हम जॉब भी दिलवाएंगे। तो बाबा कहता है इतना वो भी ऑलमाइटी, तो क्या करें? बाबा कहता है केवल इतना याद रखो, केवल कि हमें कौन मिला, तो उससे हमें अपना भाग्य, जो पद्मा पद्म भाग्य जो दुनिया में किसी का नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं भाग्य की लकीर बढ़ाने वाला, भाग्य को लिखने वाला, भाग्य विधाता वही आपका हो गया। तो जब तक ये नशा रहेगा तो आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भविष्य चिंता नहीं रहेगी, तो आप सोच में पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा आपको। कभी बच्चा सोचता है? नहीं, मस्त रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी कभी बच्चे कहते हैं बाबा मेरा सोच बहुत चलता है। क्या सोच चलता है? कि मैं सोच चलते चलते मेरा योग भी नहीं लगता, मैं टेंशन में आ जाता हूं। किस चीज का टेंशन? योग लगाने का टेंशन। अब बताइए, लगाना योग है, और योग लगाने का भी टेंशन हो जाए तो टेंशन का मतलब क्या हुआ है? तो बाबा कहते अटेंशन नहीं है। किस बात पर अटेंशन नहीं है? कि हम बच्चे हैं, बाबा के समर्पण है, बाबा हमारा भला जानते हैं, जो वो करेंगे वो हमारे कल्याण के लिए नहीं करेंगे, तो हम अपनी बुद्धि बीच में ले आते हैं। यानी श्रीमत, सर्वश्रेष्ठ मत जो दुनिया में किसी को नहीं मिली हुई, वो हमें मिली हुई है, और हम श्रीमत के अंदर अपनी मत मिक्स कर लेते हैं। तो फिर नेचुरली डॉक्टर कहे ये दवाई बिना भोजन की अमृत वेले खानी है, हम अपनी मत मिक्स कर ले कि नहीं भोजन करने के बाद ही खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हैं? तो बाबा कहते अमृत वेले मुझे याद करो, हम कहते हैं जरा अमृत वेले रेस्ट कर लेते हैं, नाश्ते के बाद याद करेंगे, तो फर्क पड़ गया। दुनिया का डॉक्टर अगर आपको कहे ये दवाई भोजन से पहले खानी है, ये दवाई भोजन के बाद, तो आप बहुत ध्यान रखते हैं, और ये जो अल्माइटी सर्जन कहे तो हुआ क्या कि हमने बच्चा भूल गए, तो नेचुरली टीचर भी भूल गए, तो विस्मृति में आ गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर कर्म करने के लिए पहले अपनी स्मृति में आओ, स्मृति की सीट पर सेट हो जाओ, फिर आपका काम ऑटोमेटिक होगा। जैसे एक पुलिसमैन भी पुलिस की ड्रेस में आ जाए और चौक के बीच में खड़ा हो जाए तो उसकी सारी पावर्स ऑटोमेटिकली उसको मिल जाती है, किसी की भी कार को रोक सकता है। लेकिन वही पुलिसमैन साइड में खड़ा हो, चाय पी रहा हो, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो इसी प्रकार से हमें अपनी सीट पर सेट रहना है, तभी हमारी और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली काम करेंगी। अब हमारी सीट कौन सी है? तो बाबा कहते हैं हमारी सीट है सोमान की सीट। अब सोमान की सीट क्या होता है? दुनिया के अंदर तो यहां पर बैज लगाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपना पोस्ट लिखते हैं कि दूसरा पढ़ ले के ये व्यक्ति ये है। बाबा कहते हैं तुमको बाहर के सामान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां रोशनी होती है वहां पर पतंगे अपने आप आते हैं, और आप अपनी रोशनी बढ़ाओ तो दुनिया अपने आप आपको पहचान लेगी। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त क्यों हुए? कि ऊंचा होकर के सारी दुनिया को किरणें दे सकते हैं। सूर्य ऊंचा होता है तो सारी दुनिया को किरणें देता है, अपना कुछ करना नहीं पड़ता। तब बाबा कहते हैं कि पहले चलो और ना से हर रोज सुबह भगत लोग तिलक लगाते हैं अपने आप को, तो हम क्या करें? स्मृति का तिलक लगाएं कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं। तो तब जो है आपका बाकी सारा कार्य ब्राह्मण के रूप में चलेगा। तब हमें पता लगेगा कि किस समय क्या करना है, वरना हम कहेंगे हम ब्राह्मण लाइफ लीड कर रहे हैं, इतने वर्ष से कर रहे हैं, अच्छा है, दुनिया से अच्छा है, कोई कष्ट आता है तो जल्दी से अपने आप को सेट कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि कष्ट हमारे आगे आ ही नहीं सकता, फर्क हो गया ना। इसलिए ये जो आज का टॉपिक है कि समय क्या कह रहा है, ये भी हमारे को इसका महत्व तभी पता लगेगा अगर हम अपने ब्राह्मण के सोमान की सीट पर सेट होंगे। आप जानते हैं कि बाबा ने हमें तीनों कालों का, कौन कौन से तीन काल हैं? बाबा कहते हैं आद मध्य अंत, उसका सारा ज्ञान दिया हुआ है। सारी दुनिया में भविष्य का ज्ञान किसी के पास नहीं है, और पास्ट का ज्ञान भी उल्टा है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं कईयों ने कुछ लिख दिया, किसी ने लिख दिया पहले तुम बंदर थे, किसी ने कुछ और लिख दिया। और भविष्य का ज्ञान तो बहुत ही उल्टा है कि सो जाओ, लाखों वर्ष पड़े हैं अभी आराम से सो जाओ। तो जब घड़ी देखने की बजाय वो शास्त्र देखते हैं, आसार देखने की बजाय लिखते हैं बुक में तो लिखा हुआ है अभी लाखों वर्ष पड़े हैं सो जाओ, तो वो तो कुंभकर्ण का हो गया। तो बाबा ने हमको समय का ज्ञान दिया, और समय का ज्ञान अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लोग ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, क्या किस लिए? देखो भाई मेरे दिन कब अच्छे आएंगे, हैं? ज्योतिषी कुछ कैलकुलेट करके बताता है, ये करो 3 महीने बाद तेरा ग्रह चेंज हो जाएगा आदि आदि। तो बाबा ने समय का ज्ञान दिया और एन समय पर दिया। वो क्या ज्ञान है? समय का ज्ञान ये है कि कोई भी चीज, कोई भी बीज समझ लो, जब बोया जाता है तो बीज बोने का एक समय होता है। अगर मान लो 7 दिन 10 दिन 15 दिन का समय होता है जिसके अंदर किसान उस बीज को बोले तो बोले, नहीं तो लेट हो जाता। फिर वो जो भी उसका फसल है, क्रॉप है, वो उगता रहता है, वो काफी समय लेता है। उसमें वो ध्यान रखता है इसको कैसे बढ़ाया जाए, वक्त पे पानी दिया जाए, वक्त पे सब कुछ किया जाए, घास उसके पास का निकाला जाए। फिर एक समय आता है जब वो फसल काटी जाती है, उसका भी समय होता है। फसल को बोने का समय थोड़ा होता है, फसल के उगने का पकने का समय काफी होता है, और फसल के कटने का समय वो भी थोड़ा होता है। वो फटाफट काट लेते हैं कि कहीं आंधी ना आ जाए, कहीं बारिश ना आ जाए, तो वो सारा फसल खराब हो सकता है। तो अब बाबा ने हमको जो सारा ज्ञान दिया, आप चक्कर को सामने लाइए, तो वर्तमान समय कौन सा है? वर्तमान समय फसल को काटने का है, बोने का है, या उसको बढ़ाने का है? जो कहते हैं काटने का है, वो जरा हाथ उठाइए। लो, अगर आप यहां से आके देखें तो किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया कि ये समय फसल को काटने का। क्या किया जाए भाई? फिर अपने सामान की सीट पर सेट होइए और नाट ड्रामा के चक्कर को सामने लाइए। ये कौन सा युग है ये तो पता है, क्योंकि अगर समय को नहीं देखेंगे तो कह देंगे कलयुग है, हम कलयुगी हैं, तो फिर पुराने नोट नए नोट का चक्कर पड़ जाएगा। ये समय कौन सा है हमारे लिए? जो कहते हैं संगम का है, चलो वो तो हाथ उठाओ। ठीक है, तो संगम का समय क्या होता है? संगम का समय पुरानी फसल को काटने का होता है, क्योंकि वो फसल अब आगे चलनी नहीं है। अगर आप उसको छोड़ भी देंगे तो गल जाएगी, सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, काम नहीं आएगी। जैसे जंगल के अंदर कोई फूल खिल जाए या फल खिल जाए तो जंगल के अंदर कोई जा ही नहीं सकता, तो वो वहीं फलते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। तो ये दुनिया है जंगल। अब इस जंगल के अंदर आपको कुछ प्राप्ति हो भी जाए तो आपके काम आने वाली नहीं है। हो सकता है आप सबने इसलिए हाथ ना उठाया हो कि भई दुनिया के लिए तो काटने का समय है, हमारे लिए तो बोने का समय। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि संगम में दोनों काम होते हैं। लेकिन जब तक हम काटेंगे नहीं तो हम बो भी नहीं सकते। जब तक आप खेत को साफ नहीं करोगे, उसमें से पुरानी झाड़ियां खत्म नहीं करोगे तो बोओगे कहाँ? तो इसलिए बाबा कहता है कई बच्चे ये भी समझते हैं कि बोने का भी है काटने का भी है, लेकिन ये नहीं पता क्या चीज बोने का और क्या चीज काटने का। जैसे आप ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में जितनी सवारियों को चढ़ना होता है वो गेट के आके खड़े होकर जोर से धक्का लगाते कि हम चढ़ जाएं, और जितनी सवारियों को उतरना होता है वो भी गेट पे आके जोर से धक्का लगाते कि हम उतर जाएं। तो गेट पे हो जाता है ना, चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों का भी होता है कि ये संस्कार जो हैं ये बड़े खराब हैं, बाबा रोज कहता है इसको निकालो। तो जोर से कहते हैं मन से निकलो, फिर बाबा कहता है अरे सतयुग में दैवी गुण होते हैं, एकता होती है, प्रेम होता है, दो मत नहीं होते, तो ये गुण धारण करो। तो कहते हैं चढ़ो ना, वो चढ़ते हैं ना उतरते हैं, गेट पर टकराए इकट्ठे हो जाते। फिर ब्राह्मण कहता है मुझे तनाव हो गया, टेंशन हो गया, उतरने वाला उतर नहीं रहा, चढ़ने वाला चढ़ नहीं रहा। इसलिए नियम क्या है, पहले दशहरा आता है या दिवाली? क्यों आता है पहले? कि जगह बनाओगे, उतरने वाले को उतरने दोगे तभी तो चढ़ने वाले को जगह मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये फसल को काटने का भी ध्यान रखना, नहीं तो आप इधर से अकाउंट चुकतू करते रहोगे, उधर से आपका बनता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अब संगम का समय तो था हमारे प्राणी दुनिया को छोड़कर टोटल नई दुनिया में जाने की तैयारी करने का, और अगर हमने मिक्स कर दिया आज का संगम का दिन और जो 20 साल पहले का संगम का दिन था और उससे भी 20 साल पहले का संगम का दिन था, अगर हमने उनको एक ही समझ लिया तो फिर हम समय की पुकार को नहीं समझ सकते, क्योंकि सायंकाल को काम करना होता है वो सायंकाल का होता है, रात्रि को करना होता है वो रात्रि का होता है, प्रभात को करने का होता है वो प्रभात का होता है। अब भक्ति में हम गाते रहे, आजकल भी हमारे गीत में लाइन है सुबह सुबह क्या, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हम भी गा लेते हैं, सुन लेते हैं, भगत भी गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर। पहली बात तो कहाँ के मुसाफिर, क्या भक्तों को पता है कि हम मुसाफिर हैं? क्या भटकने वाले को मुसाफिर कहा जाता है, या जिसको पता है मुझे कहाँ जाना है और उस तरफ जो चलता है उसको मुसाफिर कहा जाता है? तो इसलिए बाबा कहते हैं, एक तो समय की पुकार ये है कि जिस तरफ आपका मुख होना चाहिए उस तरफ फेस हो, जिस तरफ पीठ होनी चाहिए उस तरफ पीठ हो। अगर बार बार हम जिधर पीठ होनी चाहिए उधर मुख करते रहेंगे, जिधर मुख होना चाहिए उधर पीठ करते रहेंगे, तो ना तो स्पीड बनेगी, ना निश्चय होगा, ना जो हमको चलाने वाला, ले जाने वाला, उड़ाने वाला है वो भी कहेगा इसने खुद को ही बांध रखा है, मैं इसको क्या उड़ाऊं। इसलिए एक तो ये है, और हम सब जानते हैं, हालात को भी देख रहे हैं, और बाबा कहते हैं कि अब हमारी स्पीड जो है, हमारी सोच जो है, हमारा तरीका जो है टोटल बदलना चाहिए। अगर आप देखें दुनिया को संदेश देने का भी है, तो कितने वर्ष हो गए, हमने कितने तरीके कर लिए, प्रदर्शनियां लगाई, मेले लगाए, सेमिनार किए, तनाव मुक्ति किए, फिल्में बनाई, स्टूडियो चला लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी क्या है? अब फिल्म वगैरह से तो वन साइडेड होता है, बाबा कहते हैं दूसरे पढ़ने फिल्म से कोई पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि दूसरे तो आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। वो एक इंट्रोडक्शन का अच्छा तरीका है कि लोगों को अट्रैक्शन हो, लेकिन वास्तव में अब हमें क्या करना चाहिए? तो आप देखेंगे कि जो तीन मुरलियां बाबा ने चलाई हैं अब तक, चौथी चलेगी, उसमें बाबा ने हमको परिवर्तित करके तरीका बताया, और वो तरीका जो है, अगर हम ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करें कि हम बाप समान हैं, और शिव बाबा को भी फॉलो करें कि निराकार रूप से हम शिव बाबा की संतान हैं और परम धाम के निवासी हैं, और ब्रह्मा बाबा के भी हम संतान हैं और हम ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन के निवासी हैं, तो हमें पता लग जाएगा ये कौन सा समय है और अब हमें क्या करना है। नहीं तो हम पुराने काम करते रहेंगे, कोई बासी रोटी खाता रहे तो उसकी शक्ति नहीं बनेगी। हमें तो गर्मा गर्म माल मिलता है, दुनिया वाले बासी खाते हैं क्योंकि उनको गर्मा गर्म माल मिलता ही नहीं। आचार्य कौन है? आचार्य शब्द आचार शब्द से मिलता जुलता है, तो जब कोई किसी फल का या सब्जी का आचार डाल लेता है कि भाई जब मर्जी खा लेंगे, तो अचार का वो असर तो नहीं होता जो फ्रेश फल का होता है। तो इसलिए जिन्होंने शास्त्र बनाए, शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? फ्रेश फल हैं या प्रिजर्व्ड फल हैं, जो चेंज नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे उनमें नवीनता तो है नहीं। एक बच्चा था, उसका रिजल्ट निकला तो माता पिता घर आया तो माता पिता ने पूछा कैसा रिजल्ट है? जी बहुत अच्छा है। वो खुश हो गए, अरे बहुत अच्छा है? जी बहुत ही अच्छा है। तो माता पिता ने सोचा इसको तो कोई इनाम देना पड़ेगा, कोई फर्स्ट आया होगा, स्कॉलरशिप लिया होगा, क्या बताओ तो सही। कहता है जी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसने आपके लिए ऐड कर दिया। अच्छा, माता पिता भाई बोलो तो सही कुछ। तो कहता है जी इस साल आपको नई किताबें नहीं लेनी पड़ेंगी। अच्छा, आप सोचा आपने, अच्छा वो तो एक साल की बात थी, और अगर आपकी किताबें जन्म जन्मांतर ना बदलें, युगो युग ना बदलें, तो क्या समझना चाहिए, हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? आपकी गीता, आपका रामायण, आपके वेद, आपके जो भी है, वो चेंज ही नहीं होते। चेंज तब हो अगर हम पास करें। तो इसलिए बाबा कहता है, इसको कहते हैं प्रिजर्व्ड नॉलेज। तो वो रोज नहीं चलती, डॉक्टर भी रोज दवाई बदलता है पेशेंट की। तो बाबा कहते हैं इसलिए यहाँ नित्य नया, क्योंकि जब यात्रा होती है, जब मुसाफिर चलता है, तो आगे आगे थोड़ा थोड़ा तो नया चलता है ना, पिछले स्टेशन से अगले स्टेशन तक तो जाता है कि नहीं जाता। अब आप देखिए, तो हम अगर ब्रह्मा बाबा जी को देखें, तो ब्रह्मा बाबा आदि देव हमारे पिता, उन्होंने भी हमको ब्राह्मण बनाया। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं अकेला तो नहीं कर सकता, मैं गेट पर भी वेट कर रहा हूँ, आपके गेट खुलेगा तब जब बच्चे साथ जाएंगे। शिव बाबा भी अकेले नहीं कर सकते, उनका बॉडी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने, आदि देव ने इस साकार सृष्टि पर काफी समय रहकर एक ऐसी साकार सेना तैयार की जिसने काम को आगे बढ़ाना है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो आजकल हमारे पिता कौन से हैं? अव्यक्त ब्रह्मा है ना, अव्यक्त ब्रह्मा है। अच्छा, हमने बाप समान बनना है, और हमारे परम पिता शिव बाबा हैं, वो निराकार है। अब आप बताइए कि निराकार लोक में दिन रात होते हैं कि नहीं होते? हमारा निराकार लोक कहाँ है? सूर्य चांद तारों से पार है ना, वहां दिन रात तो नहीं होते के होते हैं? अच्छा, जो अव्यक्त लोक है, सूक्ष्म लोक है, वहां दिन रात होते हैं? नहीं होते। सूक्ष्म लोक में हड्डी मांस होता है? सूक्ष्म लोक में आवाज होता है? नहीं होता। अब जब कहते हैं कि दिन रात एक कर दो, इस कार्य के लिए तुम दिन रात एक कर दो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए दिन और रात में फर्क नहीं होना चाहिए। निंद्रा जीत कहते हैं, अर्जुन तुम निंद्रा जीत बनो, एक तो अज्ञान की निद्रा हो गई। लेकिन अगर हम दिन रात को सोचेंगे, बल्कि यहां से जो स्पेस में जाते हैं साइंस के रॉकेट में भी, वो भी दिन रात ऊंच नीच उल्टा सीधा नहीं देखते। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैंने सारी दुनिया को सकाश देने के लिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पर्सनल समय को यूज करने के, सेवा करने के लिए बाबा अव्यक्त हो गए। अच्छा, अब अगर हमें बाप समान बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम देखें दिन है रात है, तो हम बॉडी कॉन्शियस में, अगर आपको रात को 2 बजे भी सेवा मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? सेवा है, सेवा है। किसी डॉक्टर को भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो बाबा कहते हैं पहले तो ये समझिए कि इमरजेंसी लगी हुई है। ये जो समय चल रहा है, ये साधारण समय नहीं है, ये जीवन बिताने का समय नहीं है। ये कौन सा समय है? अगर जीवन बिताने का समय नहीं है, तो कौन सा समय है? हाँ? बाबा कहते हैं जीवन बनाने का समय है। जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, तो अपना भी जीवन बनाने का समय है, और दूसरों का भी बनाने का समय है। तो चेंज क्या करेंगे हम? अब तक हम दुनिया को ढूंढते हैं, जैसे बाबा ने हमें ढूंढा, हम मैसेज देने के लिए, बाबा का संदेश देने के लिए उनको ढूंढते हैं सारी दुनिया में, ऐसे ऐसे साधन करते हैं कि जो जो आत्माएं देवता घराने की हैं वो आ जाएं। ठीक है, अब परिवर्तन क्या करेंगे? बाबा कहते हैं तुम 60 साल तो ढूंढते रहे, कितने ढूंढे? परिवर्तन ये करना पड़ेगा कि वो ढूंढे, वो ढूंढे कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं। अब ऐसा आकर्षण हो जैसे किसी को कोई कह दे कि भाई इस सागर में नीचे बहुत हीरे हैं और ढूंढो, तो लोग सब कुछ छोड़ के उसको ढूंढेंगे ना। तो जैसे बाबा कहते हैं कि परिवर्तन करो, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जब वो हमें ढूंढे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सबको है, क्या करना है, कौन सा समय है, ये भी निश्चय है कि जितने आत्माओं को आना है बाबा के परिवार में जरूर आएंगी, पर इसका ये मतलब नहीं हम बैठ जाएं जरूर आएंगे। भोजन कल भी किया था, आज करना है तो जरूर मिलेगा, कम से कम आपको थाली से खाना तो पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं निमित्त बनना है, हमने वह हुआ पड़ा है, परमात्मा का कार्य है, अपनी बुद्धि चलानी नहीं कि नहीं होगा जी ना, वो हुआ पड़ा है। हमको सिर्फ बाबा कहते हैं कि अपना तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ लगवा देता हूं। जैसे दुनिया में छोटे बच्चे से दान करवाना हो तो पेरेंट्स के ही पैसे होते हैं, लेकिन बच्चे के हाथ में दे देते हैं कि तू दे दे, या उसके सिर पे घुमा के दे देते हैं कि बच्चे की तरफ से है। तो बाबा कहते हैं मैंने तो सतयुग में आना नहीं, मेरी तो यही खुशी है कि मेरे बच्चे वहां जाएंगे, तो इसलिए बच्चों से करवाना है। सब हुआ पड़ा है, कोई किसी को कहे जी आपकी बिल्कुल ताज तखत तैयार है, ये सारे सोफों पर ताज रखे हैं, अपना अपना ताज उठा लो, तो हम नहीं उठाएंगे क्या। इतना ही काम करना है ना, ताज उठा के सिर पे रखना। तो बाबा कहते हैं इसी तरह का जिम्मेवारी का ताज है, कोई जिम्मेवारी खास तो नहीं है, किया कराया है, खाली उसको आप अपने ऊपर तो रख लें। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को ज्ञान है, विधान का पता है, विधान कहते हैं नियमों का नॉलेज है, लेकिन विधि जो है, दो चीजें होती है, एक विधि एक विधान। तो विधान का सबको पता है ऐसे होगा ऐसे होगा, ये होना है ये होना है, लेकिन जो विधि करके उसके उस लाइन के अंदर आ जाएगा वो सफल, जो विधि ही नहीं कर पाएगा या कभी करेगा कभी नहीं, वो लाइन में लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे शब्दों में नॉलेज सबके पास है, और इतनी नॉलेज है कि दूसरे को भी हम दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ जो दूसरी चीज है कि उसको प्रैक्टिकल में करना, उसकी पावर धारण करना नॉलेज के साथ, उसमें हाथ थोड़े कमजोर हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। क्यों कांपने लग जाते हैं कि बाबा का साथ छोड़ देते हैं। अगर बाबा याद रहे तो ताकत भी रहेगी, मेरे पास ताकत नहीं है तो बाबा तो है। इसलिए बाबा कहते हैं दो शब्द हैं, सिर्फ बाबा कहो, बाबा कहते हैं बाबा, और बाबा सिर्फ मुंह से नहीं कहो, मेरा बाबा कहो, मेरा है, ऐसे नहीं दूसरों का बाबा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा है, दादियों का बाबा है, हमारे जोन इंचार्ज वालों का बाबा है, नहीं मेरा बाबा है। अगर हमने मेरा कहा तो संबंध जुट गया। कई कहते हैं हमको फील पता नहीं लगता हमारा संबंध जुटता है कि नहीं, हम बैठे हैं कभी बाबा से भी पूछ लेते हैं मेरा योग लगता है कि नहीं, बड़े भाई बहनों को भी यही कहते हैं कि भाई हमें बताओ योग कैसे लगाएं कैसे बढ़ाएं, ज्यादातर यही कहते हैं। अच्छा लगता तो है और कैसे बढ़ाएं। तो सिंपल बात है कि हमें ना भी पता हो कि बाबा से हमारा योग लगता है या नहीं, बाबा को तो पता है। बाबा कहता है अगर ये भी कह दो कि आज मेरा योग नहीं लगा, ये भी योग है, ताली बजाओ, कितना फर्स्ट क्लास आपको बता रहे हैं। अगर आप योग में बैठे और आपके मन में ये आ गया आज मेरा योग लगा नहीं, तो बाबा उसके भी नंबर जोड़ देता कि देखो बच्चे ने योग याद तो किया, क्योंकि बाबा हमारे नंबर काटने के लिए नहीं है, बाबा हमारे नंबर बढ़ाने के लिए है। बाबा यहां तक कहते हैं अगर रात को सो जाओ, सोते समय लास्ट बाबा को याद कर लो और सुबह उठ के फिर बाबा को याद कर लो तो सारी रात आपकी याद में ऐड कर दूंगा। देखो ये बड़ी आसान विधि है जो आपको ताकत देती हैं। क्यों कर देगा कि जहां कहा जाता है अंत मते सो गते, कहते हैं कि नहीं, अब अंत मते सो गते लोग मृत्यु के समय के लिए समझते हैं कि मृत्यु के समय जो याद आ जाए वही हमारा अगला हो जाता है। ऐसी कहानियां भी लिखी हुई हैं, कोई व्यक्ति बहुत पापी था, लास्ट के वक्त उसने नारायण कह दिया तो स्वर्ग में चला गया, कहानियां बनाते हैं। लेकिन बाबा कहता अंत मते सो गते का क्या अर्थ, अगर रात को आप सोए और आपको अंत हम आपका लास्ट संकल्प बाबा का आया और सुबह उठे तो फिर भी कोई दूसरा नहीं आया, बाबा का आया, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी नींद सतो प्रधान हो गई। पहले बाबा नाइट ट्रेवल कहते थे कि रात को तुम उठ के बाबा को याद करो, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे को बॉडी कॉन्शियसनेस थकाती है, सोल कॉन्शियसनेस में ना तो दिन है ना रात है, सोल कॉन्शियसनेस में, और हमें पता भी है हमारे अगले जो स्टॉप हैं वो कौन से हैं, फरिश्ता रूप और निराकार रूप, यही है ना। तो फरिश्ता रूप में भी ना दिन है ना रात है ना हड्डी है, फरिश्ता नींद करता है क्या, कभी आपने किसी फरिश्ते को सोते हुए देखा, फरिश्ता कभी भोजन करते हुए देखा उसको भूख लगती हो, नहीं। तो बाबा कहता है कि हम अपने फरिश्ते रूप को जाके वहां धारण करेंगे या यहां करेंगे, यहां करेंगे ना। तो आत्मा को भी, आत्मा की स्पीड आप जानते हैं, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए ये भी आप जानते हैं, सब बाबा ने का नॉलेज है, लेकिन विधि है उसकी जरूरत है कि हम कैसे इस शरीर में रहते हुए फरिश्तेपन का अभ्यास करें। हम वैसे लौकिक तौर पे करते हैं, अब मान लो इस सभा में काफी भाई बहन बैठे हैं, सबको ये जो क्लास है इसको सुन रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या सभी 100% सारा टाइम इस क्लास को सुन रहे हैं? सब जानते हैं कि बीच में हमारा माइंड ट्रेवल करके इधर उधर से फिर आ जाता है कि नहीं आ जाता। इसी तरह जैसे सुबह हम बाबा की याद में बैठते हैं कि सब कुछ भूल कर बाबा, खुद बाबा ने हमें एक्सरसाइज कराई हुई है, सब कुछ भूलकर सब संकल्पों को खत्म करके ये संकल्प धारण करो, एक सेकंड में मैं अपने स्वीट साइलेंस होम में चले गया, शुरू करते हैं। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि स्वीट साइलेंस होम की बजाय कहीं और बैठा हूं, तो क्यों होता है? इसीलिए कि बैठे हम शरीर में हैं, आंखें खोल के बैठे हैं, लक्ष्य लेके बैठे हैं, फिर इधर का उधर कैसे हो जाता है? तो इसका मतलब हुआ उस समय हम है तो अशरीरी, आप सपना देखते हैं या बैठे बैठे संकल्प चलाते हैं, बैठे इस शरीर में हैं, पता नहीं बैठे आप कहाँ हैं, मन से बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी तो एक प्रकार की अशरीरी अवस्था ही है ना, कि आप हैं इस शरीर में, ख्याल से कहीं आप और हैं, लेकिन ये है भटकने वाली अशरीरी अवस्था। अगर इसी को हम चेंज कर लें, ये अशरीरी का तो हमें वैसे भी अभ्यास है, केवल कंट्रोल करके अशरीरी बनना है। तो बाबा ने क्या बताया हुआ है कि मन की शक्ति ये है, सब सारा काम मन से होना है, ये सारा काम हमारा मन से होना है, मन मना भाव होना है, ठीक है। बाबा भी कहते हैं जो दिल से मुझे याद करता है मेरे दिल पर है, कोई ऊपर से नहीं होना है। अब मन से होना है तो मन को सबसे पहले कौन डिस्टर्ब करता है? मन को हमारी बुद्धि डिस्टर्ब करती है। बेचारा मन जो है वो तो जिधर अच्छा लगेगा, जिधर रुचि होगी आप ही लग जाएगा, लेकिन बुद्धि डिस्टर्ब करती है। मान लो बाबा कहते हैं पहली तारीख आ गई, नया साल आ गया, अब सारे बच्चे बिल्कुल नए साल में नई दुनिया में जाने के लिए दृढ़ संकल्प करो, हमने पुरानी दुनिया का कुछ नहीं रखना, मन में भी नहीं रखना, बाबा कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं फिर? बाबा कह रहा है, बाबा सत्य है, बाबा के आगे तो सत्य बोलना है, कोई झूठा संकल्प नहीं करना। बाबा ने कहा हम हाँ कर दें, हाथ उठा दें, फिर ना करें, ये तो बहुत खराब बात हो जाएगी, भगवान के साथ ऐसा करेंगे, ये कौन हमें गाइड कर रहा है? हमारी बुद्धि कि पहले भी पहली तारीख को बाबा ने कहा था, तुमने वायदा किया था, फिर तुमने पूरा नहीं किया, अब सोच लो कि ऐसा ना हो फिर, तो ये बुद्धि कर रही है ना। इसलिए बाबा ने बताया है कि लोग बुद्धि को बहुत अच्छा समझते हैं कि सबसे बढ़िया व्यक्ति वो है जो विद्वान है, बुद्धिवान है। बहन जी ने भी मेरा परिचय दिया, ये बुद्धिवान है, तो मुझे हैरानी होने लग गई कि मुझे बनना है, मुझे तो देवता मानना है जहाँ बुद्धि यूज ही नहीं होती, तो ये बुद्धिवान का क्या मतलब हुआ है? क्योंकि पहला पहला भगवान का महावाक्य यही है कि अपनी पंडिताई को छोड़ो, जो तुम्हारी पुरानी बुद्धि है उसको सरेंडर करो। तो इसलिए हम देखेंगे कि दिल वाला जो होगा ना, वो बुद्धि बुद्धि को नहीं देखता, जिसको जो काम करना था कर लेता है और वो कर लेता है। जिसने बुद्धि को यूज किया उसको संशय आना शुरू हो गया। बुद्धि हमें संशय में लाती है, ये आप समझ लीजिए। बुद्धि कोई अच्छी चीज नहीं है। जब भगवान श्रीमत दे रहा है तो उसकी श्रीमत में मिलावट कौन करता है? बुद्धि, ऐसे ना कर, ये तेरे तू नहीं कर सकता, तेरे में हिम्मत नहीं है, देख ले तेरे हालात और हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा परफेक्ट बुद्धि वो है जो यूज ना की जाए। धनवान कौन होता है जो पैसे को यूज नहीं करता? इसलिए सब भाई बहन कहते हैं मेरा सोच बहुत चलता है, मेरा सोच बहुत चलता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे सोचने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, जब मैंने तुम्हारा ध्यान रखना है, मैंने तुम्हारा ऊपर से देखता रहता हूँ, तुम्हारे को ऊपर से टच भी करता रहता हूँ, तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करता रहता हूँ, ऐसे हालात ले आता हूँ ताकि तुम सीधे रास्ते पर चलो, तुमको बुद्धि यूज करने से क्या होगा? मन मत जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप देखिए कोई थानेदार होता है, अब थानेदार के यहाँ पिस्तौल लगा रहता है, तो अच्छा थानेदार कौन है ताकतवर, जो पिस्तौल को यूज करे या पिस्तौल को ना यूज करे? आपके ख्याल में ताकतवर थानेदार कौन है? दुनिया में धनवान व्यक्ति कौन है, जो धन को यूज करे या धन को और ऐड करे? अगर कोई थानेदार जरा जरा बात पर पिस्तौल निकाल के दिखाना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे ये थानेदार है? नहीं, सतयुग में 100% बुद्धि रहती है लेकिन वो यूज ही नहीं करते। त्रेता में भी यूज नहीं करते तो देवी देवता हैं, सब कुछ मिलता है। द्वापर में क्या किया? बुद्धि यूज करना शुरू किया। आज देखो हमारी बुद्धि कहाँ ले आई, बैंकरप्ट बना दिया। आज सच को झूठ, झूठ को सच, और ये आप अनुभव करिए हम क्या कहते हैं। मैं ये करना तो चाहता हूँ, जब सुनते हैं बाबा कहता है ये काम करो, करना तो चाहता हूँ पर मेरे से होता नहीं। ठीक है, मैं कौन नहीं चाहता, मैं अमृत वेले उठकर एक्टिव होकर बैठूं, लेकिन मेरे से होता नहीं। सच बोल रहे हैं, या किसी के साथ कुछ ईर्ष्या कर ली, किसी को दुख दे दिया, मैं ये करना तो नहीं चाहता हूँ पर मेरे से हो गया। अब सोचने की बात है, मैं ही करना चाहता हूँ मेरे से नहीं होता, और मैं ही नहीं करना चाहता और मेरे से हो जाता है। चलो यहां तक भी ठीक है, फिर हम दूसरे को क्या कहते हैं? उसको ये करना चाहिए वो क्यों नहीं करता? अब देखिए उसके हम क्या बन रहे हैं, जज। उसको ये नहीं करना चाहिए, उसने क्यों किया, तो हम उसके जज हो गए, अपने हम वकील हो गए। तो क्या हुआ? तो जो बुद्धि वकील की क्या करती है, झूठ को सच, सच को झूठ, तो दुनिया की बजाय हम अपने अंदर ही ये करते रहते हैं कि अपने आप को वकालत करके, बहाना करके, जस्टिफाई करके अपनी ढीली चाल चलते रहते हैं। इसलिए बुद्धि तो हमारी ये है। अब अव्यक्त स्थिति में हड्डियां नहीं होती, मांस नहीं होता, आवाज नहीं होती, किसी से वैर विरोध नहीं होता, फरिश्ता एक जगह टिकता भी नहीं है। फरिश्ते का काम होता है अच्छा किया, आगे बढ़ गए। तो बाबा कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें ढूंढे और हमारे द्वारा बाबा को ढूंढे, इनको कौन कराने वाला है, तो हमें अपनी फरिश्ता स्थिति इसी बॉडी के अंदर रहते हुए धारण करनी पड़ेगी। और उसके लिए यही है कि ना कभी हम दिन रात का सोचें, ना कभी हम संसारिक चीज सोचें। जैसे कहते हैं रात दिन एक कर दो, हमारे लिए दिन रात नहीं है। एमरजेंसी में भी दिन रात नहीं होता। एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है, महीना भर आईसीयू में पड़ा रहता है, उसको दिन रात होता है क्या? डॉक्टर ड्यूटी वाले फिर भी ड्यूटी चेंज करते, वो बेचारा पड़ा हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब दुनिया आईसीयू में पड़ी है, हमें दिन रात तो नहीं करना। तो बाबा इसलिए कहते हैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर सामने देखो कितने लोग दुनिया के दुखी हैं, कितना उनको दुख है। रोज आप देखते हैं किसी का गला काट रहे हैं, कहीं बम फोड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो होना है, क्योंकि जो पत्थर होता है, पत्थर को डायनामाइट से उड़ाया जाता है। पत्थर कोई पिघलता नहीं है, ना पत्थर नरम होता है। हम लोगों को तो बाबा ने हड्डियां नरम करी, हड्डियां का तरीका बताया, हड्डियां इसमें लगा भी दो, वो बेचारे तो डायनामाइट से उड़ेंगे, वो तैयारी भी हो रही है, पर दुखी तो हैं प्रजा। और भगत कितने हैं, कितने गुरु बन गए हैं, कितने तरह तरह की बातें बता के लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, वो भी बेचारे दुखी हैं। ठीक कौन करेगा? मैं तो निराकार हूं, मैंने आपके हवाले कर दिया, आप भी कैसे करोगे? बोल के तो नहीं होगा। तो हमें अपनी अवस्था को फरिश्ते जैसा बना के और ये विश्व सेवा मनसा से करनी है, ये हमारा फर्ज है। बाबा ने एक मुरली में कहा है ना कि कृष्ण जी को बचपन में ही ताज दिया गया है, वरना राजकुमारों को ताज नहीं होता, राजा बनने पर होता। ये निशानी है कि जिम्मेवारी का ताज लोगे तो आपको दूसरा ताज मिलेगा। हम सब समझदार हैं, समय को पहचाने, समय कितना थोड़ा रह गया है, और उसमें हम कार्य पूरा करें तो हमें अपनी विधि भी बदलनी होगी और अपनी स्पीड भी बदलनी होगी। ओम शांति।
अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है।
भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है। दम से पहले भाग्य से ज्यादा
अपने साथ है।